पाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रमिता यादव। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रशासकीय अदालत विधेयक 2076 प्रतिनिधि सभा से सर्वसम्मति से पारित। लंबे दूरी के सवारी साधनों में दो ड्राइवर रखने की व्यवस्था पर कड़ाई करने की यातायात व्यवस्था विभाग ने दी जानकारी। और सरकार विरोधी प्रदर्शन से चुकाना पड़ सकता है बड़ा मूल्य। हांगकांग की प्रशासन प्रमुख क्यारी लेम का कथन। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने प्रशासकीय अदालत विधेयक 2076 को सर्वसम्मति से पारित किया है। बैठक में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री भानुभक्त ढकाल ने प्रशासकीय अदालत विधेयक 2076 का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसी तरह बैठक ने प्रमाण दूसरा संशोधन विधेयक 2075 को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। आज की बैठक में अर्थ समिति के सभापति कृष्ण प्रसाद दहाल ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक संबंधी समिति का प्रतिवेदन 2076 पेश किया। आज की बैठक में सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव ने कहा कि उपभोक्ता के अधिकार के प्रति सरकार जिज्ञासु है और साथ ही अनुगमन को प्रभावकारी बनाया गया है। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक आगामी भाद्र 1 गते सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रदेश और स्थानीय तहों का नेतृत्व करने वाले कर्मचारियों के व्यवस्थापन के विषय पर सांसदों ने अलग अलग धारणाएं रखी है। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में आज सांसदों ने अपनी अपनी धारणाएं रखी। बैठक में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित ने कहा कि संविधान की भावना के अनुसार समन्वयन और सहकार्य कर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव और स्थानीय तहों के प्रशासकीय अधिकृत संघ से खटाने की व्यवस्था की गई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की आज के लिए बुलाई गई सचिवालय की बैठक कल के लिए बुलाई गई है। तैयारी पूरा न होने की वजह से बैठक कल के लिए बुलाए जाने की जानकारी नेकपा के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने दी। प्रवक्ता श्रेष्ठ के अनुसार बैठक बुधवार दोपहर 3 बजे के लिए प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में बुलाई गई है। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय ने कहा कि निजगढ़ विमानस्थल निर्माण का कार्य स्वदेशी निवेश में ही संपन्न किया जाएगा। राष्ट्रीय सभा की राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वयन समिति की आज हुई बैठक में मंत्री भट्टराय ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि विमानस्थल निर्माण के लिए आवश्यक वन क्षेत्र लेने से पहले वृक्षारोपण किया जाएगा, साथ ही उस क्षेत्र में बसवास करने वाले लोगों को उचित स्थान में स्थानांतरण करने के लिए संबंधित लोगों से विचार विमर्श किया जाएगा। यातायात व्यवस्था विभाग ने यातायात दुर्घटना को कम करने के उद्देश्य से लंबे दूरी के सवारी साधनों में दो ड्राइवर होने की व्यवस्था को कड़ाई के साथ क्रियान्वयन करने की बात कही है। विभाग ने आज सूचना जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। इसी तरह विभाग ने मध्यम दूरी में चलने वाले सवारी साधनों को हरेक 4 घंटे में आधा घंटा विश्राम लेने की व्यवस्था पर कड़ाई करने की बात कही है। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत धादिंग की बेनीघाट रोरांग गांव पालिका 3 सलांग घाट में बीते शुक्रवार हुई बस दुर्घटना में लापता हुए लोगों की तलाश के लिए जिला प्रशासन कार्यालय धादिंग ने पड़ोसी 4 जिलों से मदद के लिए आग्रह किया है। मलंगवा से ड्राइवर सहित 45 यात्रु सवार बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिससे 11 लोग लापता हुए थे, जिनकी तलाश की जा रही है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से व्यावसायिक विश्राम का।
छक्का पर्नु छ
छ छ
नो छ गुना छ
के छ
जम्मा 9 रुपैयामा 55 MB डाटा पाइन्छ।
छक्का पर्नु छ कति सस्तो।
साच्चै सस्तो। नेपाल टेलिकमको डेटा प्याकमा बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म 9 रुपैयामा 55 MB डाटा प्याक *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनूप राज शर्मा ने कहा कि मानवाधिकार संरक्षण की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए कानून क्रियान्वयन को प्रभावकारिता देना होगा। बुटवल में आयोजित 2 दिनों की प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठी का आज समापन करते हुए अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि बाल केन्द्रित अधिकार के लिए तीनों तहों की सरकार और सरोकार वाला निकायों को सशक्त होकर आगे बढ़ना होगा। प्रदेश नंबर 5 की मंत्री परिषद की आज हुई बैठक ने प्रदेश अंतर्गत के जनप्रतिनिधि द्वारा डबल सुविधा ले पाने की व्यवस्था करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल की अध्यक्षता में हुई प्रदेश परिषद की बैठक ने ऐसा निर्णय किया। अब जनप्रतिनिधि राज्य कोष से डबल सुविधा ले पाएंगे। धनुषा में नेपाली सेना के सहकार्य में सुविधा संपन्न सर्पदंश उपचार केंद्र का स्थापना किया जाएगा। जिला की श्रीरेश्वर नाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 5 महेंद्र नगर में रहे नेपाली सेना के श्रीनाथ गन के अंदर ही सर्पदंश उपचार केंद्र बनाया जाएगा। आज एक कार्यक्रम के बीच श्रीरेश्वर नाथ नगरपालिका के मेयर योगेंद्र पंजीयार ने सर्पदंश उपचार केंद्र भवन का शिलान्यास किया। उपचार केंद्र निर्माण के लिए UNDP ने 1,26,26,000 रूपये प्रदान किया है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दीवास की टोली ने 1,60,000 रिश्वत सहित महोत्तरी की भगहा नगरपालिका 8 के वार्ड सदस्य कारी शाह के बेटे मुकेश शाह को आज गिरफ्तार किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हांगकांग में आज लगातार दूसरे दिन प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का घेराव किया। इस कारण से ज्यादातर उड़ानों को रद्द करना पड़ा। इस बीच हांगकांग की प्रमुख कैरी लेम ने प्रदर्शनकारियों को चेताया है कि हालात ऐसे रास्ते पर बढ़ रहे हैं जहां से लौटने का रास्ता बंद हो जाएगा। चीन की समर्थक मानी जाने वाली कैरी लेम ने आज सुबह भावुक अंदाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में हिंसा हांगकांग को ऐसे रास्ते पर ले जा सकती है जहां से वापसी का विकल्प नहीं होगा। लेम ने कहा, बीते हफ्ते हांगकांग के हालात देखकर मुझे चिंता हो रही है क्योंकि हम ऐसे ही रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। प्रदर्शनकारी लेम का इस्तीफा मांग रहे हैं लेकिन उन्होंने इससे स्पष्ट इनकार किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रशासकीय अदालत विधेयक 2076 प्रतिनिधि सभा से सर्वसम्मति से पारित। लंबे दूरी के सवारी साधनों में 2 ड्राइवर रखने की व्यवस्था पर कड़ाई करने की यातायात व्यवस्था विभाग ने दी जानकारी। और सरकार विरोधी प्रदर्शन से चुकाना पड़ सकता है बड़ा मूल्य, हांगकांग की प्रशासन प्रमुख क्यारी लेम का कथन। इसी के साथ हिन्दी समाचार बुलेटिन से इजाजत दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार। शुभरात्रि।